ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 21 मार्च 2021 के लिए है। विषय सामग्री स्वर्णपथ भजन सेनता। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और सिथर रहते हैं। उत्तरदायी अधियान रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन सेनता। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना विभाव स्वर्ग पर दिखाया है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसको अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। अय्यूब। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। भजन सेनता। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई पुरानी मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पांव को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। सभोपदेशिक। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ है उससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वो भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में प्रवेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, और शमौन की सास को बुखार चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर बुखार को डांटा, और वो उस पर से उतर गया, और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नए नए प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वो सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें ठीक किया। लूका। जब वो किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़ाकर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा करता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम मुंह में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। लूका। और देखो यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर के मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। करंथियों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुराही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुराही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामन दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमृता को पहन ले। और जब ये नशामन अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सवाल, होने का वैज्ञानिक कठान क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन सत्य बुद्धिमता नहीं, ना ही पदार्थ है। ये अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है, इसलिए आदमी भावतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। पदार्थ के पास खोने के लिए कोई जीवन नहीं है और आत्मा कभी नहीं मरती। मन की साझेदारी से सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मन की अनदेखी होगी। इससे पता चलता है कि ईश्वर यानी आत्मा में पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई और वो शाश्वत नहीं है, इसलिए सामग्री ना तो पर्याप्त है, ना ही जीवत है और ना ही बुद्धिमान है। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है और ना ही कोई अनय शक्ति है और ना ही मन है, वो ईश्वर प्रेम है और इसलिए वो दिव्य सिद्धांत है। सामग्री बीमार नहीं हो सकती है और मन अमर है। नश्वर शरीर केवल भावतिक में मन की एक गलत नश्वर धारणा है जिसे आप सामग्री कहते हैं। वो मूल रूप से समाधान में प्राथमिक त्रुटि थी। प्रारंभिक नश्वर मन मिल्टन द्वारा अराजकता और पुरानी रात इस नश्वर मन के बारे में एक सिद्धांत ये है कि इसकी संवेदनाएँ मनुष्य को पुनः उत्पन्न कर सकती हैं, रक्त मांस और हड्डियों का निर्माण कर सकती हैं। होने का विज्ञान जिसमें सभी दिव्य मन या भगवान और उसके विचार हैं इस युग में स्पष्ट होगा, लेकिन इस विश्वास के लिए कि सामग्री मनुष्य का माध्यम है या वो आदमी अपने स्वयं के सिनहत विचार में प्रवेश कर सकता है, खुद को बांधता है, उसकी अपनी मान्यताएँ हैं और उसके संबंधों की सामग्री का नाम और उन्हें दिव्य कानून का नाम देते हैं। जब मनुष्य क्रिश्चियन साइंस का प्रदर्शन करता है तो वो एकदम सही होगा। वो ना तो पाप कर सकता है, ना पीड़ित सामग्री के अधीन हो सकता है और ना ही परमेश्वर के कानून की अवज्ञा कर सकता है, इसलिए वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के रूप में होगा। रोग के उद्दीपित या अनंत चरणों में अंधे और शांत प्रस्तुत करने की बजाय उनके खिलाफ विरोध में खड़े हों, इस विश्वास को समाप्त करें कि आप संभावना है एक ही असहनीय दर्द का सामना कर सकते हैं जिसे मन की शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है, और इस तरह आप शरीर में दर्द के विकास को रोक सकते हैं। भगवान का कोई भी कानून इस परिणाम में बाधा नहीं डालता है। ये अशुभ लेकिन अपने पापों के लिए पीड़ित करने के लिए त्रुटि है। मसीह या सत्य अनय सभी पीड़ितों को नष्ट कर देगा और आपके अपने पापों के लिए वास्तविक पीड़ा पाप के रूप में अनुपात में बंद हो जाएगी। न्याय कानून का नैतिक संकेत है। अन्याय कानून की अनुपस्थिति की घोषणा करता है जब शरीर को ये कहना चाहिए मैं बीमार हूँ। कभी भी दोषी नहीं होना चाहिए। चूंकि सामग्री बात नहीं कर सकती इसलिए इसे नश्वर मन होना चाहिए जो बोलता है। इसलिए एक विरोध के साथ अंतर अगंता को पूरा करें। यदि आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, आप दोषी मानते हैं, तब आपका विरोध आपको न्यायाधीश नश्वर मन के पास पहुँचा देगा और न्यायाधीश आपको सजा देगा। बीमारी के पास खुद को कुछ घोषित करने और उसके नाम की घोषणा करने की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। नश्वर मन ही अकेला वाक्य करता है, इसलिए बीमारी के साथ अपनी शर्तें बनाएं और सिर्फ अपने लिए और दूसरों के लिए बनाएं। अपनी समझ में दृढ़ रहें कि दिव्य मन शासन करता है और ये कि विज्ञान में मनुष्य ईश्वर की सरकार को दर्शाता है। इस बात का कोई डर ना रखें कि सामग्री दर्द कर सकती है, सूजन हो सकती है और किसी भी प्रकार के नियम के परिणाम अस्वरूप सूजन हो सकती है। जब ये सब स्पष्ट है कि सामग्री में कोई दर्द नहीं हो सकता है और ना कोई सूजन हो सकती है, आपका शरीर किसी पीड़ की तुलना में तनाव या घाव से अधिक पीड़ित नहीं होगा जिसे आप तोड़ते हैं या बिजली के तार जो आप खींचते हैं, क्या ये नश्वर मन के लिए नहीं थे? जब यीशु ने घोषणा की कि शरीर का दिया आंख है, निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि प्रकाश मन पर निर्भर करता है। दृश्य जीवों के घटन या तिलहासे, लेंस, मांसपेशियों, परितारिका और पुतली पर नहीं है। मनुष्य कभी बीमार नहीं होता क्योंकि मन बीमार नहीं होता और ना ही पदार्थ हो सकता है। एक गलत धारणा दोनों बहकाने वाले और प्रारूभन पाप और पापी बीमारी और उसके कारण हैं। बीमारी में शांत होना अच्छा है, आशावादी होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी वास्तविक नहीं है और ये सत्य इसकी वास्तविक वास्तविकता को नष्ट कर सकता है, सबसे अच्छा है। इस समझ के लिए सर्वभाविक और सभी उपाय हैं। वो जीवन शारीरिक परिस्थितियों पर आकस्मिक नहीं है। जब हम सीखते हैं कि जीवन और मनुष्य इस शरीर से बचे हैं, ना तो बुराई, बीमारी और ना ही मृत्यु आध्यात्मिक हो सकती है, और उनमें भावतिक विश्वास किसी के आध्यात्मिक विकास के अनुपात में गायब हो जाता है, क्योंकि पदार्थ की कोई चेतना या अहंकार नहीं है, ये कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए स्थितियाँ भ्रम हैं और ये गलत स्थितियाँ सभी प्रतीत होने वाली बीमारी का स्रोत हैं। पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करें तो आप मानते हैं कि मृत्यु दर और इसलिए रोग भी वास्तव में एक आधार है। पदार्थ के अस्तित्व से इनकार करें तो आप भावतिक परिस्थितियों में विश्वास को नष्ट कर सकते हैं। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वास्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्म शास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहर पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि यह जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माण करता हो सकता है। रक्त, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क का जीवन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। वास्तविक मनुष्य का प्रत्येक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार ये मामला आखिरकार एक नश्वर विश्वास से अधिक कुछ भी साबित नहीं होगा या अस्तित्व के माध्यम से प्रभावित करने के लिए अपर्याप्त है। आए विज्ञान को स्वीकार करते हैं, भाव गवाही के आधार पर सभी सिद्धांतों को त्यागें, अपूर्ण मॉडल और भ्रामिक आदर्श छोड़ दें और इसलिए हमें एक ईश्वर, एक मन और एक परिपूर्ण उत्कृष्टता के अपने मॉडल का निर्माण करने दें। भगवान के नर और मादा को प्रकट होने दें। आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भावतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम ना होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। जीवन या ईश्वर का कोई अन्य सिद्धांत भ्रम, अपूर्ण और पुराणिक है। अब मैं मेरवे के रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।